एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेविड फॉस्टर वैलेस के निबंधों के एक बहुत ही चर्चित संग्रह की, कंसिडर द लॉबस्टर एंड अदर एसेज।
हाँ, ये किताब है हमारे पास, ये निबंध हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो गहरे विचार छिपे हैं, जो शायद थोड़े असहज भी हैं, उन पर बात करें।
बिल्कुल। और देखिए, ये निबंध लिखे तो गए थे करीब 2 दशक पहले, पर मुझे लगता है आज की जो हमारी दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, हर तरफ से जानकारी, सोशल मीडिया, उसमें ये शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, है ना?
सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भी ध्यान कैसे दें, कैसे नैतिक रूप से जागरूक रहें, और ये जो एक सतही पन सा आ गया है हमारी संस्कृति में,
हाँ बिल्कुल,
उससे कैसे जूझें,
हाँ उससे कैसे निपटें। और वैलेस का काम देखिए आसान नहीं होता पढ़ना, वो आपको आराम से नहीं बैठने देते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो आपको मजबूर करते हैं उन सच्चाइयों को देखने के लिए जिन्हें हम शायद देखना नहीं चाहते।
टाल देते हैं अक्सर।
हाँ, टाल देते हैं, चाहे वो जानवरों का दर्द हो, या फिर हमारे यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है उसका तमाशा, या फिर भाषा, है ना, भाषा कैसे एक शक्ति का खेल बन जाती है एक तरह से, वो कहते हैं ना डिफॉल्ट सेटिंग्स।
हाँ हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग्स, ये वालेस का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, विचार है।
क्या है ये, थोड़ा समझाएंगे?
देखिए, जैसे हमारे फोन में या कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स पहले से होती है ना, जिन्हें हम शायद बदलते भी नहीं,
हाँ हाँ,
वैसे ही हमारे सोचने के, दुनिया को देखने के कुछ तरीके बन जाते हैं।
हाँ,
कुछ मान्यताएं होती हैं जिन्हें हम बस मान लेते हैं, सवाल नहीं करते।
अच्छा,
वालेस कहते हैं कि भाई इन पर सवाल उठाओ, ये तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, इनसे बाहर निकलो, सोचो।
तो ये एक तरह की चुनौती है अपनी सोच को बदलने की।
बिल्कुल।
और इस काम के लिए डेविड फॉस्टर वैलेस से बेहतर शायद ही कोई और होता।
नहीं,
वो सिर्फ लेखक नहीं थे,
नहीं,
वो अपनी पीढ़ी के अमेरिका के सबसे प्रतिभाशाली विचारकों में गिने जाते हैं। उनके काम में एक दार्शनिक गहराई है, संस्कृति की बहुत तीखी समझ है।
और उनकी पढ़ाई भी देखिए कितनी अलग थी, अंग्रेजी और फिलॉसफी तो थी ही,
हाँ,
साथ में गणित और लॉजिक, इसका क्या असर पड़ा होगा उनके लेखन पर?
बहुत गहरा असर। देखिए, ये जो अलग अलग विषय है, भाषा, गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन, ये सब जटिल सिस्टम्स है ना। हाँ,
तो इन सबको समझने की वजह से उन्हें भाषा, संस्कृति, इंसानी दिमाग, ये सब कैसे काम करते हैं, इसे समझने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया मिला। वो पैटर्न देख पाते थे जहां शायद दूसरे ना देख पाए।
और लिखने का तरीका वो तो बिल्कुल ही अलग था। इतने लंबे लंबे वाक्य, और वो फुटनोट्स,
अरे वो फुटनोट्स, वो तो कभी कभी निबंध से ज्यादा लंबे हो जाते थे, और उनमें अपनी ही एक कहानी चल रही होती थी।
बिल्कुल। और भाषा भी देखिए, कहीं एकदम अकादमिक, कहीं बिल्कुल आम बोलचाल वाली।
हाँ, वो मिलावट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, वो थी उनकी जबरदस्त आत्म जागरूकता। वो लिखते हुए खुद पर ही सवाल उठाते रहते थे।
अच्छा, कैसे?
जैसे वो सोच रहे होते थे कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, मेरा अपना क्या नजरिया इसमें, मेरे अपने क्या पूर्वाग्रह हैं, और वो ये सब पाठक के सामने रख देते थे।
तो पाठक भी उस सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता था?
बिल्कुल। वो आपको सिर्फ बताते नहीं थे, वो आपको सोचने पर मजबूर करते थे। और यही ईमानदारी, यही भाषा पर पकड़, उन्हें अमेरिकी संस्कृति को अंदर से समझने और साथ ही उसकी आलोचना करने की ताकत देती थी। उनका जाना 2008 में बहुत दुखद था, लेकिन काम आज भी जिंदा है।
तो ये किताब कंसिडर द लॉबस्टर एंड अदर एसेज, ये असल में है क्या चीज? सिर्फ कुछ निबंधों का संग्रह?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ये दुनिया को देखने का, उसे समझने का, उससे जुड़ने का एक तरीका है, वालेस का अपना तरीका।
और इसका जो मूल विचार है वो क्या है?
मेरे ख्याल से सबसे केंद्रीय बात यह है कि अगर हमें सच में चीजों को समझना है, और एक कह सकते हैं नैतिक जीवन जीना है, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा।
जी,
असाधारण स्तर का ध्यान,
जी,
अटेंशन,
जी,
सहानुभूति रखनी होगी, और जो मुश्किल सच्चाइयां है ना, जिनसे हम कतराते हैं,
हाँ,
उनका सामना करने की हिम्मत दिखानी होगी।
तो ये सवाल उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि आज की इस दुनिया में जहाँ हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, चीजों को एकदम आसान करके परोसा जा रहा है, हम सब कहीं ना कहीं खुद में ही उलझे हुए हैं।
हाँ बिल्कुल।
ऐसे में एक विचारशील, नैतिक, जागरूक इंसान कैसे बना रहा जा सकता है? ये तो आज के जमाने का सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मुझे।
है, बिल्कुल है। और वैलेस हमें इसी सवाल से रूबरू कराने के लिए अमेरिका के अलग अलग कोनों में ले जाते हैं, कभी किसी बड़े से राज्य मेले में,
हाँ,
कभी लास वेगस के पॉन अवार्ड शो में, कभी मेन लॉबस्टर फेस्टिवल के बीचों बीच।
अच्छा,
तो कभी किसी नेता की चुनावी बस में।
और ये जगह सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इन जगहों को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं।
लेंस?
हाँ, मतलब इन खास जगहों के जरिए वो इंसानी स्वभाव के गहरे सवालों को देखते हैं। दुख, खुशी, मनोरंजन, राजनीति, और सबसे ज्यादा कि इस पूरी दिखावे की दुनिया में क्या असली जुड़ाव, असली कनेक्शन मुमकिन है।
ये तो भारी सवाल है।
हैं, और इसलिए ये किताब शायद उन लोगों के लिए ज्यादा है जो आसान जवाब नहीं ढूंढ रहे, जो थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, दिमाग लगाने को तैयार हैं।
जो जटिलता से भागते नहीं।
हाँ, जो जटिलता और थोड़ी अस्पष्टता से जूझने को तैयार हैं। इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, पर जो समझ मिलती है वो बहुत गहरी होती है।
तो चलिए कुछ खास निबंधों में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं बिग रेड सन से।
हाँ,
ये लास वेगास के अडल्ट वीडियो न्यूज अवार्ड्स पर है, मतलब पॉर्न इंडस्ट्री के ऑस्कर्स।
हाँ, एक ऐसी जगह जिसके बारे में ज्यादातर लोग या तो बहुत सनसनीखेज अंदाज में सोचते हैं या फिर बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते।
लेकिन वैलिस क्या करते हैं?
कमाल की बात यही है, वो न तो इसे सेंसेशनल बनाते हैं, न ही कोई नैतिक भाषण देते हैं। वो इसे देखते हैं एक बड़े कॉर्पोरेट और मतलब हैरतअंगेज तौर पर साधारण अमेरिकी बिजनेस की तरह।
साधारण पॉर्न इंडस्ट्री?
हाँ, उनका नजरिया यही है। वो दिखाते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री एक तरफ तो असीमित यौन संतुष्टि का एक सपना बेचती है, और दूसरी तरफ उसे बनाने की जो असलियत है वो अक्सर बहुत बोरिंग, मैकेनिकल, यहाँ तक कि दुखद भी हो सकती है।
अच्छा, वो उस चमक दमक के पीछे झांकते हैं।
बिल्कुल, वो उस अकेलेपन को, इच्छाओं को चीजों की तरह बेचने को, कमोडिफिकेशन ऑफ डिजायर, और रिश्तों को मशीन की तरह देखने के नजरिए में जो दुख छिपा है उसे सामने लाते हैं।
ये देखना वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे एक इंडस्ट्री जो खुद को शायद विद्रोही समझती हो,
हाँ,
उसमें भी वही कॉर्पोरेट वाले तौर तरीके, वही इंसानी पैटर्न काम कर रहे हैं।
बिल्कुल वही। अच्छा, फिर आते हैं उस निबंध पर जिसके नाम पर किताब का नाम है, कंसिडर द लॉबस्टर।
हाँ, लॉबस्टर वाला, इसकी क्या कहानी है?
वैलिस को एक बड़ी फूड मैगजीन ने मेन राज भेजा था वहाँ के सालाना लॉबस्टर फेस्टिवल को कवर करने।
अच्छा, तो ये फूड राइटिंग है।
शुरू तो वैसे ही होती है, मेले का माहौल, लोग लॉबस्टर खा रहे हैं, धूमधड़ा का।
लेकिन वैलिस वहाँ रुकते नहीं।
फिर वो अचानक एक बहुत ही बुनियादी और सच कहूँ तो परेशान करने वाला सवाल पूछते हैं।
क्या?
वो पूछते हैं, ये जो लॉबस्टर हैं जिन्हें हम जिंदा खोलते पानी में डाल देते हैं, क्या उन्हें दर्द महसूस होता है?
ओह, ये तो सोचने वाली बात है।
और अगर हाँ, तो क्या हमारे स्वाद के लिए, हमारे मजे के लिए ऐसा करना नैतिक रूप से ठीक है?
ये सवाल पूछकर तो उन्होंने पढ़ने वाले को एकदम चौंका दिया होगा।
बिल्कुल, और वो इस सवाल को हल्के में नहीं लेते। वो बाकायदा केकड़ों और झींगों के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, मतलब न्यूरोलॉजी की। जानवरों के दर्द से जुड़े जो दार्शनिक तर्क हैं उनको खंगालते हैं, और हमें यानी पाठक को मजबूर करते हैं कि हम अपनी प्लेट में रखी चीज के पीछे की जो संभावित क्रूर सच्चाई है उसका सामना करें।
तो ये सिर्फ लॉबस्टर की बात नहीं है, राइट?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस बारे में है कि हम किन चीजों को देखना नहीं चाहते, किन चीजों को नजरअंदाज करना चुनते हैं ताकि हम आराम से जी सकें,
जानबूझकर अनजान बने रहे।
हाँ, विलफुल इग्नोरेंस।
हाँ, वही, ये उसका एक जबरदस्त उदाहरण है कैसे एक साधारण सा दिखने वाला अनुभव भी कितने गहरे नैतिक सवाल खड़े कर सकता है अगर हम ध्यान देने को तैयार हो। और ये ध्यान देने वाली बात सिर्फ खाने पे नहीं, भाषा पर भी लागू होती है, जैसा अगले निबंध में दिखता है, अथॉरिटी एंड अमेरिकन यूसेज।
हाँ, ये भाषा और ग्रामर के बारे में है। अब सुनने में ये थोड़ा सूखा लग सकता है कि भाई ग्रामर पर कौन निबंध पढ़ता है।
हाँ, थोड़ा अकेडमिक सा लगता है,
पर वैलिस इसे भी एक बहुत ही दिलचस्प बौद्धिक सफर बना देते हैं।
कैसे?
वो एक अमेरिकी उपयोग शब्दकोश यूसेज डिक्शनरी की समीक्षा का बहाना लेते हैं और उसके जरिए भाषा के नियमों को लेकर जो पुरानी बहस चलती है ना।
कौन सी बहस?
एक तरफ है प्रिस्क्रिप्टिविस्ट्स, वो लोग जो मानते हैं कि भाषा के पक्के नियम होने चाहिए और सबको माने चाहिए, जैसे कोई ग्रामर पुलिस हो।
अच्छा।
दूसरी तरफ है डिस्क्रिप्टिविस्ट्स, जो कहते हैं कि भाषा तो बदलती रहती है, लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं वही नियम है, नियम सिर्फ वर्णन करते हैं, तय नहीं करते।
ये तो दिलचस्प है।
वैलिस कहते हैं कि ये सिर्फ कॉमा सेमी कॉलन की लड़ाई नहीं है, ये असल में राजनीति, नैतिकता, शक्ति, समुदाय, पहचान, इन सब चीजों से जुड़ी बहस है।
भाषा और राजनीति कैसे?
सोचिए, कौन तय करता है कि सही भाषा क्या है? स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है? सरकारी काम किस भाषा में होता है? इस सही या मानक भाषा से किसे फायदा होता है और कौन पीछे छूट जाता है?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हम भाषा को अक्सर सिर्फ बातचीत का जरिया समझते हैं,
जबकि बैलेंस दिखाते हैं कि ये कैसे समाज के ढांचे को बनाए रखने या उसे बदलने का एक ताकतवर औजार भी है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि एक मानक लिखित भाषा स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश जरूरी भी है।
क्यों?
स्पष्ट संवाद के लिए, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस के लिए। लेकिन वो इसे बहुत ही बारीकी से देखते हैं, मतलब संदर्भ के साथ।
तो भाषा के बाद अब चलते हैं राजनीति के मैदान में। निबंध है अप सिम्बा।
हाँ, इसमें वायलेंस 2000 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जॉन मैकेन के प्राइमरी अभियान के साथ साथ चलते हैं।
तो ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है?
रिपोर्टिंग से कहीं ज्यादा, ये राजनीतिक प्रदर्शन, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस का गहरा विश्लेषण है।
प्रदर्शन?
हाँ, वो पूरे तामझाम को देखते हैं, उम्मीदवार, उनके पीछे दौड़ती मीडिया की भीड़, मतदाता और इन सब के बीच जो रिश्ते हैं, जो अक्सर शक और सिनिज्म से भरे होते हैं। वो मैकेन की जो छवि बनाई गई थी, एक असली सीधी बात करने वाला, व्यवस्था से लड़ने वाला नेता, उसकी चीर फाड़ करते हैं।
और सवाल क्या उठाते हैं?
वो पूछते हैं कि एक ऐसे माहौल में जहां हर चीज इतनी नपी तुली हो, इतनी कैलकुलेटेड हो, वहां असलीपन या प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? क्या कोई नेता सच में प्रामाणिक हो सकता है जब उसका हर शब्द, हर हरकत कैमरे पर है, एक इमेज बनाने के लिए?
ये तो आज के दौर में और भी बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया के जमाने में।
बिल्कुल, ये निबंध लीडरशिप, करिश्मा, राजनीतिक दुनिया के सिनिसिज्म और राष्ट्रपति बनने की जो थका देने वाली लगभग आम मानवीय प्रक्रिया है, उस पर बहुत गहरी नजर डालता है। ये दिखाता है कि राजनीति छवि कैसे बनती है और मीडिया का उसमें क्या रोल होता है।
और एक और निबंध जो मुझे लगता है आज के माहौल में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, वो है होस्ट।
हाँ, होस्ट। इसमें वैलेस लॉस एंजलिस के एक रूढ़ीवादी कंजर्वेटिव टॉक रेडियो होस्ट जॉन जिगलर का प्रोफाइल लिखते हैं।
टॉक रेडियो, ये अमेरिका में तो बहुत बड़ा माध्यम है।
हाँ, और वैलेस यहाँ इसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे एक तरह का मतलब बनावटी गुस्सा, मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज पैदा किया जाता है।
बनावटी गुस्सा?
हाँ, कैसे दुनिया को हम और वो में बांट दिया जाता है, कैसे एक खास किस्म के श्रोताओं की जो शिकायतें हैं, उन जो असुरक्षाएं हैं, उनको भुनाया जाता है।
ये तो काफी जाना पहचाना सा लगता है।
लगता है ना। दिलचस्प बात यह है कि वैलेस जिगलर को सिर्फ खारिज नहीं कर देते, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है, क्यों इस तरह की कमेंट्री इतनी सफल होती है।
तो वो उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, उस सोच को, उस मीडिया इकोसिस्टम को। ये अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक बहस में जो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हम आज देख रहे हैं, उस पर बहुत पहले लिखी गई एक बहुत ही दूरदर्शी टिप्पणी थी।
तो इन सभी निबंधों को अगर एक साथ देखें तो कुछ मुख्य बातें या थीम्स उभर कर आती हैं, है ना?
बिल्कुल, कई धागे हैं जो इन सबको जोड़ते हैं। पहला तो वही जिसकी हमने शुरू में बात की, सचेत जागरूकता बनाम डिफॉल्ट सेटिंग्स।
हाँ, कि हमें अपनी ऑटो पायलट सोच से बाहर निकलना होगा।
हाँ, रुककर, ध्यान से, जानबूझकर सोचना होगा।
दूसरा बड़ा मुद्दा मुझे लगता है वो है प्रामाणिकता की समस्या, खासकर इस मीडिया वाली संस्कृति में।
हाँ, जब सब कुछ एक परफॉर्मेंस है, जब अनुभव हमें सीधे कम स्क्रीन के जरिए ज्यादा मिलते हैं, तो असली क्या है, असली जुड़ाव कैसे हो, ये सवाल वैलेस को बहुत परेशान करता था।
तीसरा, भाषा। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, वो एक औजार भी है और एक हथियार भी।
बिल्कुल, जैसा हमने उस ग्रामर वाले निबंध में देखा, हमारे शब्द मायने रखते हैं, वो शक्ति संबंधों को बनाते और बिगाड़ते हैं।
चौथा, ध्यान और उपभोग की नैतिकता। मतलब हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं, खबरें, मनोरंजन, खाना, क्या हम उनके नैतिक पहलुओं के बारे में सोचते हैं?
हाँ, वैलेस हमें चुनौती देते हैं कि सिर्फ निष्क्रिय उपभोक्ता मत बनो, सोचो, अपने चुनाव की जिम्मेदारी लो।
और आखिरी, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है अमेरिकी संस्कृति और शायद हमारी भी, का मुश्किल चीजों से कतराना।
हाँ, असुविधा से बचना, दुख, असमानता, नैतिक दुविधा, इन सब पर हम या तो बात नहीं करना चाहते या उन्हें बहुत सरल बना देना चाहते हैं,
एक अच्छी सी पॉजिटिव कहानी बना देना चाहते हैं।
हाँ, जबकि वैलेस कहते हैं कि नहीं, इन असहज सत्यों का सामना करो, यहीं से असली समझ शुरू होती है।
वैलेस के लिखने में एक और कमाल की बात है कि वो इन भारी भरकम विचारों को बहुत यादगार पंक्तियों में कह जाते हैं।
हाँ, उनके कोट्स बहुत मशहूर हैं। एक विचार जो उनके काम के बिल्कुल केंद्र में है, उसे हम शायद ऐसे समझ सकते हैं।
बताइए।
असली आजादी का मतलब है ध्यान देना, जागरूक होना, अनुशासन रखना, कोशिश करना और सच में दूसरे लोगों की परवाह करने और उनके लिए त्याग करने में सक्षम होना, बार बार, हर रोज, छोटे छोटे, साधारण, बिना चमक दमक वाले तरीकों से।
वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा है। ये कह रहा है कि आज़ादी सिर्फ बाहरी चीज नहीं है।
नहीं, ये अंदर की बात है। ये अपनी उस डिफॉल्ट सेटिंग यानी खुद को ही दुनिया का केंद्र समझने की जो हमारी प्रवृत्ति है उससे रोज लड़ने की बात है। और ये आसान नहीं है, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, अनसेक्सी है जैसा वो कहते हैं।
पर शायद यही सच्ची मानवीय आज़ादी है।
शायद। और हमारी उसी डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में वो एक और बहुत ही तीखी बात कहते हैं।
क्या?
मेरे अपने निजी अनुभव में हर चीज इस गहरे विश्वास की पुष्टि करती है कि मैं ही ब्रह्मांड का केंद्र हूं, अस्तित्व में सबसे वास्तविक, सबसे जीता जागता और महत्वपूर्ण व्यक्ति।
ये पढ़कर तो शायद किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन इसमें सच्चाई तो है ना?
है, एक असहज करने वाली सच्चाई। हम सब अपनी अपनी दुनिया के हीरो हैं।
हाँ।
इस बात को पहचानना और ये समझना कि हर दूसरा इंसान भी अपनी दुनिया का उतना ही असली हीरो है, शायद यहीं से सहानुभूति शुरू होती है।
और वैलेस एक और चीज की आलोचना करते हैं, वो जो आजकल बहुत दिखता है, हर चीज का मजाक बनाना, किसी चीज को सीरियसली ना लेना।
हाँ, वो व्यंग्यात्मक उदासीनता, सिनिकल डिटैचमेंट। वो कहते हैं कि जिसे भावुकता से परे एक कूल निंदक श्रेष्ठता समझा जाता है, वो असल में शायद सचमुच इंसान होने का डर जैसा है।
मतलब असली भावनाओं से जुड़ने से डरना, कहीं हम कमजोर या अनकूल न लगें।
हाँ, शायद वही। तो हम हर चीज पर हंसकर या उसे छोटा दिखाकर खुद को बचाते हैं, जबकि वैलेस कह रहे हैं कि असली इंसानियत तो उसी जोखिम को उठाने में है, गंभीरता से चीजों की परवाह करने में।
और एक बहुत ही सीधी लेकिन शायद सबसे गहरी सलाह जो उनके काम से मिलती है, हर रोज सचेत और जिंदा रहने की कोशिश करें।
हाँ, ये याद दिलाता है कि भाई ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। रोज सुबह उठकर ये चुनाव करना है कि आज मैं ध्यान दूंगा, आज मैं अपने डिफॉल्ट सेटिंग से थोड़ा लड़ूंगा।
तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, इन्हें लागू कैसे करें?
देखिए, एक तो बहुत साफ है, मीडिया को और ध्यान से देखना और समझना सीखें।
क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी।
हाँ, वैलेस हमें ये सोचने का औजार देते हैं कि ये जो कहानियां हमें सुनाई जा रही हैं, खबरों में, विज्ञापनों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पर, ये कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, इसमें क्या एजेंडा छिपा हो सकता है।
तो हम जो भी देख सुन रहे हैं उस पर सवाल उठाएं।
बिल्कुल, रोक कर पूछें। दूसरा, अपने रोज के फैसलों में नैतिकता का ध्यान रखना।
लॉबस्टर वाली बात याद रखें।
हाँ, हम क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं, किससे कैसे बात करते हैं, इन सब के असर के बारे में थोड़ा और सोचें, बिना किसी बने बनाए जवाब के, बस ईमानदारी से सोचने की कोशिश करें।
बातचीत और रिश्तों में भी ये सोच काम आ सकती है।
बहुत ज्यादा। क्या हम सच में दूसरे को सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बोलने की बारी का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं या कोई नकाब पहने हुए हैं? वैलेस की जो भाषा और प्रामाणिकता पर पकड़ थी, वो हमें ज्यादा गहरे संवाद की तरफ ले जा सकती है।
और एक आखिरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगती है, अपने दायरे से बाहर निकलना।
हाँ, अपने कंफर्ट जोन से, अपने बौद्धिक बुलबुले से। वैलेस का तरीका हमें उकसाता है कि हम उन लोगों को भी पढ़ें और सुनें जिनसे हम असहमत हैं।
सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं,
नहीं, बल्कि सच में ये समझने के लिए कि वो दुनिया को वैसे क्यों देखते हैं। ऐसी चीजें पढ़ें जो हमें चुनौती दें।
तो कुल मिलाकर इस संग्रह से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए शायद ये कि सोचना, सच में गहराई से, आलोचनात्मक ढंग से सोचना, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, ये एक नैतिक काम है। हम कैसे सोचते हैं ये तय करता है कि हम कैसे इंसान बनते हैं।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो ये है कि आधुनिक जीवन की जो सतहें हैं, मनोरंजन, राजनीति, खाना, वो अक्सर ऐसी बनाई जाती हैं कि हम उन्हें बस आसानी से कंज्यूम कर लें, ज्यादा सोचे नहीं।
हाँ, सब कुछ स्मूथ और इजी।
सच्ची जागरूकता के लिए जरूरी है कि हम रुकें, गहराई से देखें और वो सवाल पूछें जिन्हें ये सतहें छिपाने की कोशिश करती हैं। ये अपने आप में एक छोटा सा विद्रोह है सतहीपन के खिलाफ।
इन निबंधों को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि लोगों को रोजमर्रा की चीजों में भी ज्यादा जटिलता नजर आए और शायद ध्यान देने की एक नई जिम्मेदारी महसूस हो अपने आसपास की दुनिया पर, दूसरों पर और हाँ, खुद अपने विचारों पर भी।
ये किताब सिर्फ बेहतरीन निबंधों का कलेक्शन नहीं है, ये एक तरह का आह्वान है।
हाँ, एक नैतिक और बौद्धिक आह्वान। वैलेस की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो अपनी तेज बुद्धि को एक बहुत ही सच्ची, संवेदनशील और गहरी सहानुभूति वाली इंसानियत के साथ जोड़ पाते थे। वो दिखाते हैं कि स्मार्ट होना और दयालु होना, ये दोनों साथ चल सकते हैं,
बल्कि शायद साथ चलने ही चाहिए।
शायद। और अंत में एक सवाल शायद पाठक के मन में रह जाए, जिससे वैलेस खुद भी जूझते दिखते हैं।
क्या?
कि क्या इस तरह की गहरी जागरूकता, ये लगातार नैतिक जांच पड़ताल, क्या इसे हर समय बनाए रखना मुमकिन भी है, या ये इतना थका देता है कि हम वापस अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स में चले ही जाते हैं। शायद चुनौती परफेक्शन में नहीं है, बल्कि उस लगातार कोशिश में है, उस रोज के प्रयास में।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।